سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 2. ان کا عنوان ہے کائنات ایک مشین ہے، تو قرآن اس کی گائیڈ بک ہے. رات کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، کڑک، بجلی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی بجلی کے چمکنے اور گرجنے کا جو ایک وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے کہ اس نے ان چیزوں کے ناموں پہ پوری پوری صورتیں رکھ دیں جس کو ہم کبھی دن میں اس نظر سے دیکھتے بھی نہیں کہ یہ اللہ کی کوئی نشانی ہے. اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہمیں تدبر کی دعوت دیتی ہیں کہ آخر تم سوچو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور یہ رب جو ان ساری چیزوں کو چلانے والا ہے کیا تمہارے نظام کو، تمہارے معاملات کو نہیں چلائے گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے ایک ایسے نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے کہ جس میں کچھ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں اور کچھ نہیں دکھتی. آج کے دور کا شوشہ کیا ہے کہ جو ہمیں دکھے گا ہم اسی کو مانیں گے. بہت سارے لوگ جو خدا فراموش ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں رب دکھتا نہیں، حالانکہ اس کے برعکس آج کے سائنسدان بھی اور آج وہی لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جس کو وہ دیکھتے نہیں. مثلا کشش ثقل کسی نے آج تک دیکھی نہیں، لیکن آج بھی اس کو آپ مانتے ہیں گریویٹی کے نام پہ، کہ زمین کو کے اندر سے ایک 9.8 پوائنٹ پہ جو ایک گریویٹی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آسمان، اللہ تعالیٰ کہتے بغیر آمد ان ترونہا، بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو. آج دنیا میں کسی جگہ کوئی چھت بنے اور پتہ چلے کہ اس کی کوئی دیواریں نہیں، کوئی روپس نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک سیدھی سی چھت معلق کھڑی ہے بیچ میں، کوئی مانیں گے ہی نہیں، کہیں گے یہ کیسے. کچھ نے اگر کچھ کر بھی لیا میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر کے، یا کہیں کچھ اس کے اندر بیلنس کر بھی لیا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر سہارے موجود ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو جو رب آسمان کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہارا سہارا نہیں بن سکتا؟ تم کیوں دوسروں کو پاتے ہو؟ تم کیوں دوسروں کی طرف نگاہیں ڈالتے ہو جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے؟ جب ایک انسان اللہ کو اس طرح اپنا سہارا بنا لیتا ہے پھر اس کی زندگی کے اندر وہی گردش آتی ہے جو سورج اور چاند کی گردش ہے. پھر وہ بھی گھومتا ہے تو صرف اپنے رب کی مرضی کے گرد گھومتا ہے، اور ایسا ہی شخص ہے کہ جو اس کائنات کو ایک استاد کے طور پہ لیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ واقعی اگر دیکھا جائے تو جو حقائق قرآن پاک میں لفظوں میں لکھے ہوئے ہمیں دکھتے ہیں یہ کائنات اس کی عملی تصویر دکھتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں بالکل تضاد نہیں. جو چیز آپ کو اللہ کی اس کتاب سے ملتی ہے وہی آپ کو کائنات میں پریکٹیکلی دکھتی ہے. سورج کو گھومنا تھا تو گھوم رہا ہے، چاند کو گھومنا ہے تو گھوم رہا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سورج وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کائنات کی اطاعت ہے. یہ سب اللہ کے بن کے اس وقت پہ وہ کام کریں جس وقت پہ ان کو کرنا ہوگا. صرف بات یہ ہے کہ جو لوگ اگر صرف اسی چیز پہ غور کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اسی طرح جھکنا چاہیں گے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. اور وہ ذات ہے جس نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ تھی آیت نمبر 3. اس کا عنوان ہے منصوبہ بندی کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ کائنات کے اندر کتنا زیادہ بیلنس ہے، ہر چیز اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے. زمین کی کشش اتنی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اس سے بڑھا دیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ چیز ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور یہ سورج چاند ستارے سب کچھ جو ہے زمین کے اندر جا کے دھنس جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص جگہ پہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کائنات वाकई एक बाख्तियार मालिक के तहत चल रही है और इसके अंदर जो कुछ भी है वो इंसान के फायदे का है। पहाड़ों को देख लें, नहरों को देख लें, दरियाओं को देख लें, ये सब चीजें ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह के हुक्म के आगे बंधी हुई है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान का भी यही हाल होना चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा होना करार दिया। ये चीज अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में नाजिल की थी, लेकिन अब इस वक्त ये चीज डिस्कवर हो गई कि इंसानों के तो इंसान है, पौधों के अंदर भी जोड़े होते हैं। और आप देखिए कि जैसे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, नर होते हैं, मादा होते हैं, एक बिल्कुल ऐसी पॉलिनेशन हो रही है इस कायनात में, हमें पता भी नहीं लगता। हम कहते हैं ये खजूर का दरख्त है, हालांकि खजूर का दरख्त मादा भी होता है और नर भी होता है, दोनों तरह के, उसके फल उस पे जाते हैं, उसके फल उस पे जाते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है कि उसने ये सब कुछ हमें दिखा दिया कि देखो मैं तन्हा हूँ, रब की जात ही तन्हा है, इसके अलावा हर चीज का जोड़ा है और ये कायनात हमें इसी का सबक दे रही है। बार बार जो आयात की बात आती है तो याद रखिए कि आयतें दो किस्म की होती हैं, एक आयते कुरानिया और एक आयते आफाकी। कुरान की आयतें वो हैं जो इस वक्त मेरे और आपके सामने खुली हैं, और आफाकी या कायनाती या कौनी, इनको तीनों को एक ही नाम दिया जाता है, यानी तीन नाम एक ही आयतों के। इस आफाक में, इस उफक के अंदर फैली हुई निशानियां, इसी तरह इस कायनात के अंदर फैली हुई निशानियां। जिस तरह कुरान को पढ़ते हुए अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, इसी तरह इस कायनात के इस्लाम को देख कर भी अल्लाह को मानने को दिल चाहना चाहिए कि ये कायनात की चीजें अगर जरा सी नाफरमानी करें तो हमारा क्या हाल हो। जरा सोचिए कि अगर सूरज एक दिन के लिए नाफरमान हो जाए, दिन नहीं सिर्फ एक मिनट के लिए नाफरमान हो जाए, इस कायनात का निजाम धर्म बरहम हो जाए। अगर ये पहाड़ अपनी जगह खड़े होने की बजाय चलने लगे तो हमारा हाल क्या हो। हम कितने सुकून से कायनात के अंदर घूमते हैं फिरते हैं, हम समंदर के किनारे जाएं और एकदम सिर्फ चंद मिनट की नाफरमानी करें, हम कहते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो मिनट है, क्या वो आपको भी फन ना हो, क्या वो एंजॉयमेंट ना हो। अगर एक लम्हे के लिए सूरज भी एंजॉय करे और के मुझे छोड़ दो मेरे रास्ते, आज मैं भी मस्ती में हूँ, मैं फैलना चाहता हूँ, और शहरों के शहर जो है वो डूब के रह जाए। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। कभी कभी ये जो डिजास्टर्स आते हैं या हरिकेन्स आते हैं या पानी के अंदर तूफान आते हैं तो ये अल्लाह के हुक्म से आते हैं, ये एक आजमाइश होते हैं। अल्लाह देखता है कि जब बंदे सरकश हो गए हैं तो अल्लाह ताला अपनी किसी मखलूक को उसके खिलाफ सरकश कर देता है, कभी हवाओं की सूरत में और कभी पानियों की सूरत में, और वो इंसान ऐसे हो जाते हैं कि जैसे थे ही नहीं। वफिल अर्दि क़िताउ मुतजावीरात व जन्नात मिन अनाबिन व ज़रउ व नखील सिनवान व गैरु सिनवान, और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं, और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज ऐसे हैं जो बेशाख हैं, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं, इसमें अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। ये थी आयत नंबर 4, इसका अनवान है दिल जमीन की तरह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह जमीन मुख्तलिफ किस्म की होती है, इसी तरह इंसानों के दिल भी फर्क होते हैं। बाज़ जमीन के टुकड़े ऐसे होते हैं कि जो बहुत जरखेज होते हैं, पानी के चंद कतरे भी अगर उनके ऊपर आ जाते हैं तो वो उसको ले के अंदर से कुछ ना कुछ फसल या फल पौधा वो निकाल लेते हैं। कुछ जमीन के टुकड़े ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं होती खैर, बस पानी आया, थोड़ी देर कीचड़ बना और उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन कुछ जमीन ऐसी होती है जो बिल्कुल बंजर होती है, खुश्क होती है, पानी को भी अंदर नहीं जाने देती, जो ही बारिश खत्म हुई तो वो पानी खत्म हुआ। फरमा इसी तरह लोगों के दिलों का हाल है, इब्ने आदम के दिल भी ऐसे हैं। कुरान की वही हर एक के दिल पे उतरती है, लेकिन उस वही से फायदा लेने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं। आज हम सब जितने भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को सुन रहे हैं, इस वक्त हम सब भी कहें कि हम जमीन के टुकड़े नहीं है, हम भी मिट्टी से बने हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े हैं। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने जज्ब की कैफियत मुख्तलिफ रखी है। यही वजह होती है कि एक ही क्लासरूम में बैठे हुए लोग मुख्तलिफ लेते हैं, बाज लोग डूबे होते हैं और बाज किसी और ही सोच में डूबे होते हैं, बाज की कुछ और ही सिचुएशन होती है। याद रखिये कि हमारी एब्जॉर्प्शन हमारे अमल में फर्क ले आएगी। एक उस्ताद की बात सुनने वाले, एक आवाज सबके कानों में टकराने वाली, लेकिन दिलों की वजह से अमल के पौधे कम होते हैं। कुछ तो हरे होने को बेचैन होते हैं, उनकी तो आंखें बताती हैं कि अब कोई ऐसा मौका आ जाए कि जिससे हम अपने आप को मजीद इस इल्म के साथ निखारें। कुछ होते हैं वो इस पे बहुत खुश होते हैं कि चले हमने इसको एक दफा समझ लिया, और कुछ इससे आगे और कुछ इससे पीछे। हम सबको अपने दिल को देखना है, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। बाज दफा पूरी जिंदगी लोग कुरान के साथ जुड़े रहते हैं, कहीं इधर सुन कहीं उधर सुना, लेकिन दिल हरे नहीं होते, अमल हरे नहीं होते। ये वही मट्टी है कि जिसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सबको बता दिया कि देखो सब कहाँ से आए, युस्का भी माए वाहिद, एक पानी जिसके अंदर कोई रंग नहीं, कोई जायका नहीं, कोई खुशबू नहीं, लेकिन लेकिन जब वो अनार के दरख्त के ऊपर गिरता है तो वहां से मीठे अनार उगते हैं, जब वो आम के दरख्त पे उगता है तो आम उगते हैं। कभी सोचा जाए तो हम इंसान भी तो एक ही किस्म के पानी से पैदा हुए, फिर क्यों इंसानों में इतना फर्क होने लगता है? क्यों कुछ लोग वो कर जाते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, और क्यों कुछ लोग सिर्फ सोचते सोचते दुनिया से चले जाते हैं? फर्क दिल का है। अगर हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तो हमारे दिलों को भी खैर वाले दिल कर दे और हमसे ऐसी खैर निकले कि जिसकी वजह से जैसे पौधों और फसलों के जरिए से हरियाली आती है और सरसब्जी आती है, अल्लाह तो हमारी वजह से हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अंदर भी हरियाली ले आ, और ऐसी दुआएं मांगना इंशाल्लाह इंसान को फायदा देता है। क्योंकि जो लोग अपने आप को हमेशा इख्तसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार होते हैं, अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को अपने काम के लिए चुन लेता है। और वो लोग जो अपनी हिजात में ही अपने आप को एक कुल कायनात समझने वाले, जो कभी किसी की बात को सुनना पसंद न करें, फिर उनका हाल क्या होता है कि वो अपनी थोड़ी सी हिदायत पे इतने मुतमईन होते हैं, वो समझते हैं कि हमें हर चीज मिल गई। कायनात का यही असूल है। एक जमीन पे जब बारिश पड़ती है तो वो ये नहीं कहती कि छोड़ दो अब इस बारिश को, अब पिछले साल भी तो बारिश पड़ गई थी, वही काफी है। जैसे मट्टी थोड़ी देर के बाद खुश्क होने लगती है ना, इसी तरह दिलों की मट्टी भी खुश्क होने लगती है। इसका एक इलाज है कि इसको हर वक्त पानी से तर रखो। जितना इसके ऊपर पानी पड़ता रहेगा आप देखेंगे कि अंदर से हरियाली आएगी। ये वो सफर है कि जो मौत के तक ही इंसान के चलता जाएगा, तभी उम्मीद की जा सकती है कि इंसान का दिल सरसब्ज रहे। वइन ताजब अजब उन कौलुहुम, अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही है जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही है वो जो जहन्नुम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा रहेंगे, और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही। यकीनन इनसे पहले सजाएं गुजर चुकी हैं, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी, और ये यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला है। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है। यह है आयत नंबर 5 से 7, 5 to 7। इसके टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है ये लोग अपने ख्यालात के गुलाम हैं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो इंसान अपने ही ख्यालात में जीता है ना, वो अपने आप को ही बड़ा समझता है, लेकिन जो अपने ख्यालों से निकलकर अल्लाह के गुलाम बनने लगते हैं, उनको हर चीज में अल्लाह की जात दिखती है। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं जो अल्लाह के मुनकर हों। अक्सर लोग जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुनकर होते हैं। अल्लाह को मानने वाले बहुत है, लेकिन अल्लाह को खालिक मानने वाले थोड़े हैं, अल्लाह को माबूद मानने वाले थोड़े हैं। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला को खालिक मान ले और आखरत को ना माने, तो उसका लामुहाला नतीजा क्या है कि फिर वो हिसाब किताब के जब गाफिल है तो वो मानना ना मानना एक बराबर हो जाता है। और इसकी बड़ी वजह जो होती है अमूमन जमूद और तासुब होता है। जो बात बचपन से सुनते आए उसको बदलने को हम तैयार ही नहीं है। इंसानों की अक्सरियत का यही मसला है कि वो अपनी रिवायात के पाबंद होते हैं, वो अपने ख्यालात के पाबंद होते हैं, वो अपनी कुछ पुरानी हालतें जो है उसको इतना अपने ऊपर सख्त कर लेते हैं कि उनकी गर्दनों के तौक की तरह उनके गलों में गुलामी की तरह से फंसने लगती है। और ऐसे लोगों को जितनी मर्जी अल्लाह की बात सुनाई जाए, हर बात को टालने के लिए बस यही बात काफी है कि पर फिर ये बताओ क्या हमारे बड़े गलत थे, फिर बताओ क्या जो पिछली जिंदगी में हमने काम किए क्या वो कुछ भी नहीं थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर एक और पैगाम देता है। अगला टॉपिक है इनायत का, मोहलत के बाद दर्दनाक अजाब है। ऐसे लोग जो फिर दावत को कबूल नहीं करते, फिर उनका इंजाम क्या होता है कि अल्लाह ताला फिर उनको पकड़ लेता है, शुरू में ढील देता है। ये ढील उनको ऐसे लगती है कि अल्लाह ताला की तरफ से बेनियाजी है या अल्लाह को हमारी बात का पता नहीं चला। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह का कानून है मोहलत क्या है, कि जब लोग सरकश होने लगे अल्लाह उनको एक हद तक मोहलत देता है, और जब इसके बाद कोई चीज उनके सामने आती है तो वो सिर्फ दर्दनाक अजाब होती है। तीसरा टॉपिक इनायात में क्या था कि गुमनाम को मानना मुश्किल है, माने हुए को मानना आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के बीच में मौजूद थे, सामने खाते पीते बुलाते उठाते हर काम करते, मक्का वालों ने नहीं माना। आज अगर इस दुनिया में देखे तो 1 अरब से भी ज्यादा मुसलमान है जिन्होंने नहीं देखा। फर्क किस बात का है कि आज वो लोग जिन्होंने देखा नहीं उस नबी को वो मान गए, और कल जिनके बीच में नबी मौजूद था वो नहीं माने। क्यों? इसके अंदर वही बात है कि जब एक हस्ती मान ली जाती है ना, जब किसी की हकीकत लोगों के सामने खुलती है, वो मशहूर हो जाता है, फेमस है, लोगों ने आजमा लिया, ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसे को मानना आसान है। आज के दौर में अगर कोई इस्लाम पे है या अल्लाह के नबी को हीरो मानता है, मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी आपकी खूबियों की बुनियाद पे आपको मानते हैं। वजह क्या कि आप मान चुके, आप एस्टेब्लिश हो गए, आप कह सकते हैं कि एक एस्टेब्लिश चीज के अंदर हिस्सा डालना लोगों को बहुत आसान लगता है। इसके बरक्स एक नई चीज हो, बेशक उसके फायदे सामने दिख रहे हो, लोग उसके अंदर नहीं आना चाहते। मक्का वालों का यही मसला था कि उनको उस दौर में अल्लाह का नबी एस्टेब्लिश नहीं दिखता था, उनकी नजर जो थी दौलत पे थी, लोगों की भीड़ पे थी कि किसके पास क्या है, इसीलिए वो फिर आपसे बार बार निशानियां मांगते थे, अच्छा कोई और, कोई और, कोई और। इसके बरक्स जब लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से एक दुनिया के अंदर इतना बड़ा इनकलाब होता देखते हैं तो आज मान लेते हैं। यही है इम्तिहान कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस दुनिया में लोग अल्लाह की दी हुई निशानियों के साथ ही उसको मान लें। कल जब अल्लाह की जात जब दुनिया में लोगों के सामने आएगी, गर्दनें झुकने लगेंगी, कमरें झुकने लगेंगी, और अल्लाह ताला उनकी कमरों को उस वक्त तख्ता बना देगा। क्यों? कि कल मैंने पुकारा था, कल मेरी निशानियां तुम्हें दिखती थी लेकिन तुम नहीं मानते थे। तो बात यह है कि निशानियों को ढूंढने की बजाय और तावीलें करने की बजाय जो बंदा आज इस दुनिया में अल्लाह को मान लेगा, इंशाअल्लाह ताला फिर कल उसको इस पर रुसवाई नहीं होगी। अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तगीदुल अरहाम। मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती है अल्लाह इसे बखूबी जानता है, और पेट का घटना भरना भी, और हर चीज इसके अंदाजे से है, जाहिर और पोशीदा का वो आलिम है, सबसे बड़ा और सबसे बुलंदो बाला। तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बावाज़े बुलंद से कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर और यकसां है। इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगेबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक के वो खुद से ना बदले जो इनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम को सजा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, सिवाय इसके कोई और कारसाज नहीं है। ये थी आयत नंबर 8 से 11। इसके दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है माँ का पेट, एक हैरत अंगेज फैक्ट्री। कैसे अल्लाह ताला ने यहां मादा की बात की है, फीमेल की बात नहीं की, उनसा की बात नहीं की। औरत तो औरत है। आप देखिए कि जानवरों के अंदर भी जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चों को जब पैदा करती हैं, अल्लाह कहते हैं मुझे एक एक चीज का पता है, कब से दुनिया बनी। आप हैरत अंगेज हद तक ये देखते हैं कि दुनिया में औरतों और मर्दों का एक खास तवाजन है। ये माँ की जो फैक्ट्री है, जो माँ के पेट के अंदर मशीनें लगी हुई हैं कि यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, ये कौन सी जात है जो इसको पीछे से ऑपरेट कर रही है। आप देखें कि बाज दफा किसी जंग की सूरत में या किसी हमले की सूरत में, डिजास्टर की सूरत में मर्द खत्म भी हो जाते हैं। जंगों में ऐसा हुआ, पिछली जब वर्ल्ड वॉर्स लगी तो उसमें मर्दों की तादाद इतनी कम हो गई थी कि एक वक्त ऐसा आया था कि यूरोप में भी औरतों को शौहर नहीं मिलता था, और ऐसे दौर में अगर कोई औरत शौहर हासिल कर लेती थी तो इतनी खुश होती थी कि उस पर अपना नाम भी कुर्बान करती थी। और तब से ये मिसिस फुलां का तासुर चला, ये पहले नहीं था। यानी आज औरतें बड़ी मजे से शादी के बाद अपने शौहर के नाम को अपने बाप के नाम की जगह लगाती हैं, ये इस्लाम में नहीं था और ये क्रिश्चियनिटी में भी नहीं था। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर या गालिबन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ कि इतनी नापैद हो गई थी शादियां कि मर्द मिलते ही नहीं थे, और जब किसी औरत को शौहर मिलता था वो इस खुशी में अपना नाम भी कुर्बान करती थी कि मैं मिसिस फुलां हूं। चलें, ये तो एक अलग बात थी। हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि कैसे लड़के और लड़कियां जो हैं बराबर हैं। हर औरत से पूछें वो कहेगी मेरे बेटा हो। आप खुद ही पूछ लें अपने आप को, इतने लोग अगर पूछे ना आप क्या चाहते हो, आप कहते हैं हाँ बहुत सारे बेटे हो, एक बेटी हो जाए, चलो टेस्ट चेंज कर लेंगे। आप जरा सोचिए जितनी खवातीन आप यहाँ बैठी हैं, आप सबकी अगर ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, आज से पूरी हो गई, चलिए 15 20 25 साल बाद क्या होगा, आप सबके घरों में बेटे होंगे, बेटी तो होगी नहीं, ब्याहेंगे कैसे, फितरत का निजाम कैसे चलेगा। अल्लाह ने ये जो अपने इख्तियार में रखी है ना, और आज देखिए ये जो हम उथल पुथल करते हैं अल्लाह की कायनात के अंदर कि आप अपनी मर्जी से बेटा पैदा करा लो, अपनी मर्जी से बेटी पैदा करा लो, ये फितरत में दखल अंदाजी है। सारे बेटे पैदा कर लेंगे कल क्या होगा, ये कितनी खूबसूरत चीज है कि जितनी डिमांड है उतनी ही अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर उसकी सप्लाई की हुई है। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। ऐसे लगता है कि जैसे पीछे से इसको ऑर्डर्स मिलते हैं और उसके साथ अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा इतनी औरतों में बेटियां हो जाए, इतनों में बेटे हो जाए। ओवरऑल आप देखेंगे तो बिल्कुल बैलेंस है। एक छोटी सी एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, वैसे तो ये कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं हो सकती, आप सिर्फ अपने खानदान या अपने भाई बहनों के बच्चे बच्चियों को, मिलने जुलने वालों के बेटे और बेटियों को गिन लें, जितने लोगों को आप जानते हैं ना, फलां के इतने बेटे हैं इतनी बेटियां, उसकी इतनी बेटियां इतने बेटे हैं, आपके सामने एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म की कैलकुलेशन आएगी कि ऑलमोस्ट टोटल मिला लड़कों और लड़कियों का जो तनासुब है वो बिल्कुल बराबर होगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, और वो क्या है, कौमों का अरूजो जवाल। कोई अचानक फैसला नहीं। आयत नंबर 11 का ये टॉपिक है। और हकीकत यह है कि हम अपनी आंखों से सुबह शाम कौमों को उभरते और डूबते हुए देखते हैं। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी कौम को उरूज देना हो या जवाल देना हो, ये कोई अचानक फैसला नहीं होता। ये सब कुछ अल्लाह की हिफाजत और निगेबानी में हो रहा है। अल्लाह ताला ने दो तरह के फरिश्ते हमारे ऊपर मुकर्रर किए हुए हैं। एक वो है जो हमारे आमाल की हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो हमारी जिस्म की हिफाजत करते हैं। इस बात को एक ही आयत में लाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात जो कह दी कि वइज़ारादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्दलहू, जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो कोई उसको हटा नहीं सकता। ये है वो बात जो लोगों को अगर समझ आ जाए तो वो कभी भी मनमानियां ना करें। अल्लाह ताला किसी कौम को कभी भी उस वक्त तक नहीं पकड़ता जब तक वो कौम खुद वो काम ना कर ले के जो पकड़े जाने के काबिल हो। अल्लाह ताला ने लोगों को नेमते दी, कितना कुछ दिया। आज आप देखिए कि दुनिया में ही देख लीजिए कि कुछ कौमें हमें बहुत तरक्की याफ्ता दिखती हैं। जरा उनकी चीजों को अगर आप नोट करते जाएं तो उनकी क्या खूबियां होती हैं। अमूमन देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज, जिनको हमेशा हम अपना दुश्मन पेश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह की निगाहों में सब बराबर है। हम हो तो उनको पानी का घूंट ना दें, अल्लाह उनको इतनी तरक्की क्यों दे रहा है। कुछ खूबियां होंगी उनमें, मेहनत करते हैं, जफाकश होते हैं, इल्म का दौर दौरा होता है, सोशल वर्क पे वो लोग बहुत तवज्जो देते हैं, जो काम करते हैं आसान तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं कि आज सड़क बनी और अगले महीने में वो सड़कें टूटने के लिए तैयार हो गई। फिर वक्त के पाबंद होते हैं, रिसर्च उनमें है, यूनिवर्सिटीज उनके अंदर है। आप देखते जाएं, ये तो मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि वो कोई किसी को चीट नहीं करते। लाइब्रेरीज हैं, उनके अंदर इजादात है, अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उनके खाने पीने के औकात बड़े मुनासिब है। हमारा डिनर जो वो रात 12 बजे के बाद शुरू होता है, उनका डिनर 4 से 6 बजे के बीच में खत्म हो जाता है। अब ये सारी बातें अगर आज हम अपनी उम्मत के अंदर देख लें तो क्या हमारे अंदर है आज इनमें से कोई भी खूबी? इल्ला माशाल्लाह जो हो सो हो, चंद इंडिविजुअल्स में हो, मैं अमूमी कौम की बात कर रही हूँ। आज अगर उम्मत मुस्लिमा जवाल पजीर है तो उसकी ये नहीं वजह कि अल्लाह उनका दुश्मन है, उसकी वजह यह कि उन्होंने उन खूबियों को खत्म कर दिया, उन चीजों को अपने अंदर से निकाल दिया जो कौमों को दुनिया में भी इज्जत देते हैं। ये आखिरत की बात नहीं है। ये नोट कीजिएगा कि ये अरूज और जवाल दुनिया का अरूज और जवाल है। आखिरत में जो होना है उसके तो और डिमांड्स हैं। अल्लाह का कानून बड़ा बेलाग है। दुनिया में जो करेगा मेहनत, अच्छा काम करेगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा। वो मोमिन कर ले, वो काफिर कर ले, वो फाजिर कर ले, वो अल्लाह को ना मानने वाला कर ले, अल्लाह फिर भी उसको देगा। ये नहीं हो सकता कि मोमिन को तो घास हरे रंग की दिखे और काफिर को वो काली दिखे। ये नहीं हो सकता कि मोमिन चले तो वो किसी जगह पहुंच जाए और काफिर चलता रहे और अपनी ही जगह पर रहे। अल्लाह ने इस दुनिया को भी दोनों के लिए रखा। आज अगर हम पीछे हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या कि हम सुस्त हो गए, हम आराम तलब हो गए, हम नफ्स के हरीस हो गए, हम पेट के गुलाम हो गए, हम इज्तमाइयत से हटके इनफिरादियत पे आ गए। दुनिया में भी और दीन में भी, दोनों मामलात में आप देखिए कि आज हमारा क्या हाल होता है। आप देखेंगे कि हम जो चीज बार बार अपने इस सफर में देख रहे हैं कि मुसलमानों में इस वक्त इज्तमाई सोच नहीं रही, हमें जाती सोच का फिक्र है। मुझे ये गम है कि मेरा घर नहीं बना, मुझे ये गम नहीं कि उम्मत के कितने लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, वो किस तरह के हालात में। मुझे ये फिक्र है कि मेरा घर साफ हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे सड़कें कितनी साफ हैं। मैं जब पहली दफा शादी के बाद अपने शोहर के साथ पाकिस्तान गई तो इतनी मुझे शर्म आई, कहते थे कि मतलब कहने से मुराद ये कि एक फीलिंग जो मुझे आती थी कि घर तो हमारे वाकई इतने खूबसूरत है। मैं आज भी कहती हूँ कि जो हमारे मुल्कों के घर हैं मुझे पूरी दुनिया में वैसे नहीं मिले। अल्लाह ने इतनी जगह घुमाया फिराया, साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उतने फैंसी नहीं है जितने माशाल्लाह हमारे मुल्कों में के घर हैं। लेकिन जो सड़कों की हालत हमारी, आप उसी सजे सजाए कैसल नुमा महल हवेली नुमा घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पांव गटर के पानी में डूबते हैं। सोच क्यों नहीं आती? इसलिए कि इज्तमाइयत नहीं है, इनफिरादियत है। हम दीन के नाम पे भी जो काम करना चाहते हैं वो इनफिरादी तौर पे, अलग अलग हम नुमाया बैठे हुए, हमारा नाम चमक रहा है, हमारे मदरसे का नाम चमक रहा है, हमारे अंदर वो इज्तमाइयत नहीं। इसके बरक्स अगर आप वेस्टर्न कल्चर को जाके देखें, यहाँ कोई इस तरह दीन का काम भी नहीं करता। इनकी गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश इदारे, इनके खास डिरेक्शन होती है, उसी के अंदर से चर्चेज बनाते हैं, इनको पता होता है यहाँ जरूरत है यहाँ नहीं जरूरत, किस किस्म की बातें हैं। तो लिहाजा बात क्या है कि अगर कोई कौम चाहती है कि वो अल्लाह की निगाहों में बड़ी हो तो उसको इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। एक नए सिरे से एक नई सोच देके हमें मुसलमानों के अंदर एक ऐसी रूह बेदार करने की जरूरत है, और ये काम कर सकते हैं लीडर्स। लीडर्स कभी भी डिस्करेजिंग नहीं होने चाहिए। हमारा हाल क्या है कि हर बंदा दूसरे पे तनकीद करके चला जाता है, और जब वो जाता है तो उसके ऊपर दूसरे लोग करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इंशाल्लाह जब कभी हम इन आयतों को तफसील से पढ़ेंगे, इतनी वाज़े किस्म की रहनुमाई आपने दी कि देखो तुम ये करना, देखो तुम ये करना, देखो तुम अमानत की अंदर खयानत ना करना, और देखो तुम इस तरह से मेहनत के आदी बन जाओ, और देखो तुम अपने खाने पीने के वक्तों को ठीक तरह से रखो, तुम अपने अखलाक को अच्छा करो। तुम्हारे अंदर दुनिया में भी अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा, तो बात यह कि अल्लाह ने हमें वर्ल्ड लीडर बनाया था और हम बने थे। हमने सिर्फ 2-4 साल नहीं, हजारों साल इस दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, लेकिन जब हमारे बड़े और हमारे छोटे दुनिया परस्त हो गए, जब खुब दुनिया व कराहियतुल मौत आ गई, तो आज हाल देख लीजिए कि लोग हमें कैसे उछाल रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है, इसको कोई छुपा ले तो छुपा ले, लेकिन ये छुपने वाली चीज नहीं है। आंखें बंद करके कहे नहीं ऐसा नहीं वैसा, और सबसे बड़ा गम क्या है कि नाकामी का एहसास ही नहीं है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगे, आप कैसे कह सकती हैं, देखिए हमारी तो इतनी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहूंगी कि इंडिविजुअल्स की बहुत इज्जत है। आज भी इंडिविजुअली मुसलमानों में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनके बुक रिकॉर्ड्स के अंदर नाम होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज भी इंडिविजुअली ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे मुल्क भी होंगे कि जो दुनिया के अंदर बहुत नुमाया है, लेकिन ओवरऑल अमूमी तौर पर आप देखिए किस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है। वही जो शायद ने भी कहा था ना कि वाए नाकामी एहसासे ज़ियां जाता रहा, कि मीरे कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा, यानी एहसासे ज़ियां जो है ना वो ज़ियां से बड़ी तकलीफ है। किसी का जाया हो जाना जो है ना वो छोटा नुकसान है, लेकिन इसका एहसास ना हो कि ये जाया हो रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी कोई चीज फ्रिज में से निकली या आप सिंक में कोई चीज बहा रहे हैं, वो चीज बह रही है, पानी जाया हो रहा है, जाया हो गया, लेकिन अगर आपको उसका एहसास भी ना हो तो और ही जाया होगा। तो लिहाजा जरूरत है इस वक्त की कि हम सब अपने आप को उस सोच के लिए तैयार करें कि हम कैसे बदलेंगे। अल्लाह ने हमें सिर्फ कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत कह के नहीं करना कि अच्छा तुम हो वो लोग, अच्छा माशाल्लाह तुम हो, एक एक मेहंदी और उबटन की रस्म पे तुम 4-4 घंटे बैठे रहते हो, आधी आधी रात तक तुम लोगों के लिए बैठे रहते हो, बताओ तुम्हारा मेरे लिए हाल क्या होगा। जब मेरे मेरे नाम पे तुम्हें पुकार लगती थी उस वक्त तुम्हारा क्या हाल था। और ऐसे लोगों को फिर इसी में यही पैगाम है कि अल्लाह तआला कभी जुल्म नहीं करता। इंशाल्लाह आगे भी एक आयत आने वाली है, उसमें और खुल के इस मौजू पे अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाई। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क खौफन व तमा व युनशियु सहाबा थिकाल, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। गरज इसकी तस्बीह और तारीफ करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है। कुफार अल्लाह के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह ताला खूब कुव्वत वाला है। इसी को पुकारना हक है, जो औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो उसकी पुकार का कुछ जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो किसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी इसके मुंह में पड़ने वाला नहीं। इन मुनकरों की जितनी पुकार है वो सारी की सारी गुमराही की है। ये थी आयत नंबर 12 से 14, 12 to 13। इनका उनवान है खौफ और उम्मीद जिंदगी का हिस्सा। दूसरा उनवान लिखिए अकलमंद वो है जो खालिक को पूजे ना के मखलूक को। ये है वो जगह जिसकी वजह से सूरत का नाम अर्रात है। जब भी रात बिजली कड़कती है तो उसके साथ आप देखिए एक तो मौसम के बदलने का पैगाम होता है, अच्छी खुशखबरी होती है। कभी कभी बिजली जो है वो मौसम के बदलने की उम्मीद देती है, और कभी वही बिजली सायका बनकर जमीन पर गिरती है और चीजों को गिरा देती है। इसी तरह जब बादल उठते हैं तो कभी वो मुफीद बारिश की सूरत में बरसते हैं और कभी तूफान और सैलाब का पेश खेमा होते हैं। ये बात हमें क्या बताती है कि अल्लाह ने दुनिया में हर चीज के अंदर डर और उम्मीद दोनों का पहलू रखा है। इस दुनिया में अल्लाह ताला जब लोगों पर अपनी रहमत करता है तो वही चीज किसी दूसरे की तबाही का जरिया भी बन जाती है। इंसान का काम क्या है कि वो अल्लाह की पकड़ से बचे। आपके पास अहसनुल बयान के अंदर भी ये बात लिखी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजली कड़कती थी तो उस वक्त ये आयत पढ़ा करते थे। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, युसब्बिहु रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। ये वाली आयत के अंदर आप देखेंगे तो तफसीर में भी ये चीज आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो है इंसान पढ़ सकता है खौफ और उम्मीद के वक्त में, और अगर यहाँ ना भी मिले तो बहरहाल ये सही रिवायत है कि ऐसे वक्त में अगर पढ़ा जाए, बल्कि 3 दफा पढ़ने का भी जिक्र आता है, तो अल्लाह ताला उसको फिर बिजली से महफूज रखेगा। अगली चीज जो है इसमें दूसरा टॉपिक क्या था, शिर्क के बारे में। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या बात कही इसमें कि बास दफा कुछ लोग पानी के किनारे पे खड़े होके पानी को मांगते रहते हैं। हम में से कोई इसका एक्सपीरियंस कर सकता है, समंदर के पास चले जाए और वहां जाके अपने हाथ क्यों फैलाएं, खोलें हाथों को और कहें समंदर पानी दे दो, समंदर पानी दे दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि समंदर से कुछ पानी के कतरे या कुछ घूंट निकले और आपके हाथ में आए और आप पी लें, आपकी बात वो समंदर नहीं मानेगा। इसके बरक्स दिन रात हम देखते हैं कि उसी समंदर का पानी नमक को नीचे छोड़ के ऊपर जाता है, भाप बनता है, फिर वहां बादलों में बदलता है, फिर अल्लाह तआला के हुक्म से, फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है जहां पे वो जाके बरसता है। ये किस बात की खबर है कि समंदर जो बजाहर इतना बड़ा इतना अजीम है, लेकिन अल्लाह के आगे वो इतना आजिज है कि वो अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर अपना सब कुछ देने को तैयार है। यही खूबी अल्लाह ताला इंसान में देखना चाहता है कि इंसानों के आगे मत हाथ फैलाए, लोगों की कब्रों पे जाके उनसे मत मांगे, बल्कि खालिक को पूजे ना के मखलूक को। जैसे समंदर इतना बड़ा होने के बावजूद अल्लाह का हुक्म मानता है, हम क्यों नहीं मांगते। पिछले 1-2 साल पहले, कुछ गालिबन कुछ अरसा पहले, मुझे इजिप्ट में जाके रहने का इत्तेफाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेरा घर था वो बिल्कुल समंदर के किनारे था, और वहां का एक शहर है अलेक्जेंड्रा, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो तकरीबन 50 माइल तक सिर्फ समंदर का किनारा है। यानी हम जहां भी शहर में होते थे तो हमारी लेफ्ट साइड पे ओशन होता था। मैंने उन दिनों में इतनी शिद्दत से इस चीज को महसूस किया कि समंदर तो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा, और जो उसके रंग है और जो उसकी खूबसूरती है वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। कहीं सब्ज, कहीं फिरोजी, कहीं ब्लू, और उसके अंदर से उठती हुई सफेद कलर की इतनी बड़ी बड़ी लहरें कि इंसान का दिल जो है वो उसके अंदर बंद के रह जाए। इतना बड़ा समंदर अल्लाह के हुक्म से, जरा सा वो समंदर आ गया है, मैं सोचती थी कि अल्लाह माफ करे, जरा सा ये समंदर आ गया है तो पूरा अलेक्जेंडर डूब जाएगा। कई दफा रात को भी ख्याल आता था कि इतनी करीब है समंदर की लहरें, और तारीख में ऐसे हुए वाकया, समंदरों के किनारे की जो चीजें वो डूब गई, और अल्लाह माफ करे इंसानों का हाल क्या कि समंदरों के किनारे ज्यादा गुनाह करते हैं, वहां ज्यादा खराब काम होते हैं। असल में तो अल्लाह ताला को एक चैलेंज किया जाता है ना कि देख हम तेरे अंदर आते हैं। अब तो हमने समंदरों को खुश कर करके उसके अंदर में बिल्डिंग्स बना के और लोगों के लिए वहां ऐश परस्ती के सामान बना दिए। मैं सोचती हूँ सिर्फ समंदर से अगर कोई इताअत सीख ले तो इंसान कभी बड़ा ना बने। ऐसा समंदर, तू भी रब का बंदा है और मैं भी उसी रब का बंदा हूँ। मैं कितना हूँ, 5 फुट का, और वो भी पूरा ना अगर हो, लेकिन तू इतना बड़ा हो कि अल्लाह के हुक्म को मानता है, तो उस रब को छोड़ के मैं गैरों के आगे हाथ लेके जाता हूँ। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दु वकरहा, और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, और इनके साए भी सुबह शाम। आप पूछिए कि आसमान और जमीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर भी इसके सिवा औरों को हिमायती बना रहे हो, जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का अख्तियार नहीं रखते। कह दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनी बराबर हो सकती है। क्या जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है, कि इनकी नजर में पैदाइश मुश्तबे हो गई है। कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीजों का खालिक है, वो अकेला है और जबरदस्त और गालिब है। ये थी आयत नंबर 15 और 16, 15-16। इनका उनवान है झुकना, तमाम कायनात का दीन है। आप देखेंगे हर चीज अल्लाह के आगे झुकी हुई है, हर चीज सजदे में है। वो हमारे साए ही क्यों ना हो जो जमीन पे गिरते हैं, वो जानवरों का झुक के पानी पीना क्यों ना हो, वो दरख्तों का फलों से लदने के बाद उनकी शाहों का झुकना क्यों ना हो। जो चीज अल्लाह ताला ने इस कायनात को जबरदस्ती सिखा दी इंसान से, वो शऊर के साथ मतलूब है। आप कह सकते हैं कि सजदे करवा के सजदे करने की ख्वाहिश पैदा करवाई गई। अल्लाह ताला ने इंसान को आंख दी, लेकिन जो इस आंख से देखते नहीं फिर अल्लाह की निगाहों में नाबीना है। जो अल्लाह की इस नेमतों से फायदा उठाते हैं लेकिन उस रब को नहीं मानते, इनका हाल ऐसा ही है कि वो सब कुछ देखते हुए नहीं देखते। आगे अल्लाह ताला 2 मिसालें देते हैं जिससे ये बात बड़ी खूबसूरत तरीके से समझ आती है इंशाल्लाह। कि अनज़ला मिनस्समा ईमान, उसने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वसत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया। और इस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं, जेवर या साजो सामान के लिए इसी तरह के झाग हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। अब झाग तो नाकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो चीज लोगों को नफा देने वाली है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान करते हैं। ये थी आयत नंबर 17-17। इसका उनवान लिखिए फितरत का सबक, दूसरे को नफा देने वाला ही बचेगा। ये आयतें सूरत रात की क्रीम आयत, हर सूरत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आयत होती हैं कि जो पूरी बात समझाती हैं। 2 मिसालें थी, पहली मिसाल थी आसमान से पानी के गिरने की। पूरे जोश के साथ पानी गिरता है, उस पानी को नदी नाले जो है ले के फिर उसके अंदर उछाल पैदा करते हैं। ये है कैफियत नए नए ईमान की। जो लोग पहली दफा ईमान का टेस्ट चखते हैं ना, उनके अंदर यही जोश होता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, बल्कि जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों से ये पूछती रहती हूँ कि आप बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफा कुरान सुन रहे हैं, किन के कानों पे इस कुरान का पैगाम पहली दफा आ रहा है, कि जो उनके दिलों को तार को हिला दे। ये है वो कैफियत जो नए नए ईमान की होती है। इंसान की तबीयत ऐसी है कि जब उसको कोई चीज नई मिलती है ना तो वो उसको बड़ी दिन रात इस्तेमाल करता है, उसका जोश होता है। बच्चे को देखिए, आप कोई नया खिलौना दिलाते हैं, बस उसको दिन रात उसको हाथ में पकड़ के सोएगा। क्योंकि उसको गवारा नहीं होता। बिल्कुल, जब इंसान शौरी तौर पर नया ईमान लाता है ना, तो उस ईमान के ये तकाजे हैं कि इंसान के अंदर जोश हो, वलवला हो, उसका दिल चाहता है मैं कुछ और करूं। वो इस पे नहीं मुतमईन होता ये मैंने कर लिया, बल्कि वो इस तरह नदी नाले बन के फैलना चाहता है। अगर इस वक्त के ईमान और इन जज्बात को इंसान कुचल दे और मुतमईन होके बैठ जाए, अच्छा फिर करेंगे, अच्छा फिर देखूंगी, तो याद रखिए फिर दिल की वो हालत नहीं होती। मैं अक्सर सुनने वालों को कहती हूँ कि कुरान पढ़ते के दौरान, सुनने के दौरान जो नीयत होती है ना, जो दिल में इरादे आते हैं, फौरन इस पे अमल कर लिया करें। अगर आपने इस सफर के दौरान दौरान अमल ना किया और अपने आप को इस कलाम के साथ जोड़ने की नीयत ना की, अल्लाह ना करे कि ये सफर पूरा हो और हम फिर वैसे खुश्क नदी नाले बन जाए जैसे थे। अल्लाह इन झरनों का बहना हमें क्यों दिखाता है कि तुम्हारी आंखें रब के खौफ से बहने लगे? ये पानियों का जोश हमें क्या बताता है कि अपनी मुर्दा जिंदगी को छोड़ो, जोश पैदा करो। अपनी दुनिया को तुमने किन तमाशों में लगा रखा है? वो काम करते हो जो एक दिन करते हो, रात तक फिर खत्म हो जाते हैं। अब देखिए सुबह होती है, हम बड़े शौक से काम शुरू करते हैं, खा लिया पी लिया, घर साफ, बड़े खुश हैं, शुक्र आज के काम हुए। 2-3 घंटे होते हैं, बच्चे आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर किचन फैल जाता है, फिर घर गंदा होने लगता है। रात को बड़े मुतमईन होकर कहते हैं शुक्र है सब खा पी लिया, सब ठीक है। सुबह उठते हैं, घर फिर फैल रहा है। क्या हमारी कोशिशें ऐसी खराब जगहों पे जा रही हैं कि आज खुद ही बनाते हैं और कल खत्म? आज जो पेट अभी भरा, 6-7 घंटे बाद ये फिर खाली का खाली। आज अपने कपड़े पहने, नहा धो के 2-3 दिन बाद फिर गंदे के गंदे। क्या इंसान सिर्फ इन चीजों की खिदमत करके दुनिया से चला जाए कि जिसके अंदर इसी दुनिया में रह जाना है? क्या इंसान वो काम ना करे जो पैगाम है इन आयतों का, उसको हाईलाइट करवाऊंगी। वह अम्मा मा यन्फउन्नास आयत नंबर 17 के अंदर है, इसको हाईलाइट करें तो आपको इंशाल्लाह इसका थीम समझ आएगा। दूसरी मिसाल को भी अगर हम साथ देख लें कि जब जेवरात बनाने के लिए या किसी भी वेपन को बनाने के लिए जब धात को पिघलाया जाता है ना, जैसे कॉपर है या सिल्वर है या कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर झाग आती है। और आप लोगों ने अगर कभी गुड़ पिघलाया हो ना, तो आपको उसकी फीलिंग्स आ सकती हैं कि ऊपर ऊपर मैली झाग आती है, उसमें कोई उसकी तूड़ी धागे कुछ ऐसी चीजें आप उसको साथ साथ हटाते रहते हैं। कभी लोग जब फ्रेश दूध लेते थे तो उस वक्त भी ये कैफियत होती थी कि जब दूध को जोश आता है तो ऊपर वो तिनके और अगर कोई ऐसी गंदगी लगी होती थी वो आती थी, उसको उठा लिया जाता है। ये है कायनात का इंतजाम। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बेकार चीजें होंगी ना, वो झाग बन के ऊपर से हटाती जाएंगे कि उसको खत्म कर दिया जाएगा, बचेगा क्या? वम्मा यन्फउन्नास, जो लोगों को नफा देगा। ये है वो चीज जो इंसान को सोने नहीं देती, ये है वो चीज जो इंसान को उसके वक्त को जावेदां करने की दावत देती है कि कुछ कर लो के लोगों को नफा मिल जाए, कुछ कर लो के लोगों को नफा मिल जाए। आज देखिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम क्यों है? कभी आपने किसी ने सोचा वो खूबसूरत है? उनकी गाड़ी मर्सिडीज थी या लैंड क्रूजर थी? कभी आपने सोचा कि वो शहर के किस हिस्से में रहते थे? लेकिन आज इमाम बुखारी का नाम क्यों है? वम्मा यन्फउन्नास, कि अल्लाह के कलाम के बाद इंसानी कलाम में सबसे बड़ी आला किताब सही बुखारी है। ये एजाज है इमाम बुखारी को, मैंने इसीलिए उनकी मिसाल दी, क्योंकि अबू बकर उमर की बातें तो करते ही रहते ना, आप कहेंगे हाँ वो तो अल्लाह के नबी के साथी थे। एक आम इंसान नाबीना पैदा हुआ, माँ की मन्नत थी कि बच्चा पैदा होगा तो मैं उसको अल्लाह के नबी के हदीसों के लिए डिवोट करूंगी, और बच्चा पैदा हुआ तो नाबीना था। माँ ने कोई ना शुक्री नहीं की, दिल से कोई बात नहीं की, सब्र करती रही, और एक दिन जाए नमाज पे खड़ी रो रही है कि अल्लाह मैंने तुझसे कुछ मांगा था, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे दिया, लेकिन इसकी एक चीज तेरे पास रह गई है, अब बता के ये किन आंखों से हदीस लिखेगा, तू बता के मेरी मन्नत क्यों कबूल ना हुई? और माँ का तड़पना था कि बच्चे को आंखें मिल गई, और वो आंखें मिली कि चांद की रोशनी में सही बुखारी लिखा करते थे। आखिरी उम्र तक इनकी नजर तेज रही, इतना जबरदस्त हाफजा था कि लोग हदीसों के मतन और उसकी सनद जो थी उसको घुमा फिरा के इनके सामने पेश करते थे कि ये है, तो फौरन टोकते थे कि ये हदीस उसकी नहीं, ये उसकी नहीं, ये उसकी है। कभी आप पढ़ के देखें इन लोगों की कहानियां, क्यों फम्मास लोगों को नफा देखे गए? आज इनकी किताबें कुरान की तफसीर को समझने और समझाने में बड़ी अहम है। आपके लिए जो असनुल बयान चूज की गई, इसकी भी बहुत बड़ी वजह थी कि इसके अंदर बहुत सारी अहादीस जो वो सही बुखारी की है, ऑथेंटिक है। अब आप देखिए वो दुनिया से चले गए, इंसानियत को क्या देंगे? अपने इल्म का विरसा देंगे। आप सिर्फ सियासत्ता लिखने वाले 6 जो मुसन्निफीन थे उनके नाम और उनकी जिंदगी को पढ़ लें तो यकीन करें सर शर्म से झुक जाता है। ये लोग वो किताबें लिख गए कि जो आज हमें नाम भी नहीं आते। मैं सिर्फ यहाँ बैठे हुए अपने समेत सब लोगों से अगर ये कहूँ ना कि सिर्फ सियासत्ता के नाम उनके पूरे राइटर्स के साथ दे दें, तो अल्लाह ही चाहेगा जिसको आते होंगे बाकियों को नहीं आते होंगे। हम जाके अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, 10 सहाबियों के नाम पूछ लें, 10 सहाबियत के नाम पूरी उनकी बल्दियत के साथ पूछ लें, हम कहाँ खो रहे हैं? हम 15-20 साल तक आते हैं और दुनिया की एक तालीम हासिल करते हैं, और हमें हो सकता है कि अल्लाह ताला के 10 अहकामात के भी पूरे मसाइल ना मालूम हो। कहाँ जा रहे हैं? आज हर दिन कितने लोग मरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, गए आज मरे कल दूसरा दिन, हसकम जहां पाक वाली कैफियत। लेकिन कुछ लोग हैं जब दुनिया से जाते हैं तो आसमान भी रोता है और जमीन भी रोती है। उनकी खैर चली जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक इल्म वाले का दुनिया से जाना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, और एक वक्त आएगा कि सब चले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, ना कुरान रहेगा, ना बताने वाले रहेंगे, सिर्फ मौज और मस्तियां करने वाले रहेंगे, और उन्हीं लोगों पे क्यामत आएगी। आज हम सिर्फ नफा लेना चाहते हैं अपनी जात के लिए, अल्लाह करे नफा दो, किसी रंग में दो। आज देखिए ये काफिरों के जो नाम है, आज न्यूटन का नाम क्यों है? फम्मा यन्फोन्नास, उसने लोगों को नफा दिया, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया। आज अगर आप मुख्तलिफ लोगों ने जो डिस्कवरीज की, सिर्फ उन्हीं के नाम कायनात में याद रखे जाते हैं, चाहे दीन हो या दुनिया, जिन्होंने लोगों को नफा दिया। हम अपने इस 5-6 फुट के जिस्म को अगर देख लें, हमने क्या नफा दिया? हम तो शायद सारी जिंदगी खुद ही लेने वाले बनते रहे, नतीजा क्या हुआ कि हमारी सलाहियतें सारी इस दुनिया के लिए लग गई। मैं सोचती हूँ ये आयतें पढ़ के तो इंसान मचल उठता है और पुकार उठता है कि अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई खूबी है तो अपने दीन के लिए ले ले, अल्लाह अगर मेरे पास कोई माल है तो उसको अपने रास्ते में कबूल कर ले, मेरे पास वक्त है तो उसको अपने रास्ते में लगा ले, मेरे पास जगह है तो अल्लाह तो उसको अपने रास्ते में लगा ले। अल्लाह के रास्ते में लगाना ऐसे जैसे सेव होना, बचाना। और यकीन करें कि मैं बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जिस मौजू पे बात हो जाती है, जिस कोई बुक पढ़ा दी जाती है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह इसको अब महफूज कर ले, अब मैं कोई और काम कर दूं जो महफूज हो जाए। मुझे नहीं पता मेरे पास एक सांस और है कि नहीं, एक दिन और है नहीं, जो काम है वो हो जाए। हर दर्स की तैयारी के लिए मैं यही सोचती हूँ, क्या पिछला ही दे दूं? नहीं, चलो एक और तैयारी करती हूँ, शायद किसी को काम आएगा, शायद मेरी इस बात से किसी को फायदा होगा। चलो ये तो यहाँ थोड़े से लोग सुन रहे हैं, हो सकता है बाद में ये दूसरों तक जाए। यानी हर वक्त तड़प क्या होनी चाहिए कि घुल रहे हैं, जैसे नमक पानी में घुलता है ना, उससे ज्यादा तेजी से हम घुल रहे हैं। मैं सोचती हूँ अभी भी हम संजीदा नहीं होते, अभी भी हम कहते नहीं अभी सोचा नहीं, अभी बहुत सीरियस नहीं हुए, अभी कमिटमेंट से डर लगता है। यकीन करें आप सब हीरे की काने हैं। अल्लाह के नबी ने ये बात की कि लोग इन कानों की तरह, कान यानी माइंस, किसी के अंदर से पीतल निकलेगा, किसी के अंदर से गोल्ड निकलेगा, किसी के अंदर से सिल्वर निकलेगा। हर बंदे की मुख्तलिफ सलाहियत है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा सुन सकता है, कोई अरेंजमेंट अच्छा कर सकता है, कोई मनी वाइज अल्लाह ने उसको दिया होता है। हर बंदा अपनी सलाहियत को पेश करे और अल्लाह के रास्ते में लगा दे कि अल्लाह ये है मेरे पास, तो इसको कबूल कर ले, और यही चीज इंशाल्लाह फिर दुनिया के अंदर एक झाग बनाती है। फिर आप देखिए कि यहाँ यानी ये हक और बातिल की इतनी खूबसूरत मिसाल है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसकी जो रूह है वो आपको समझा सकूं। कभी भी कोई वादी अकेली नहीं बहती, छोटी छोटी चीजें जब जमा होती हैं, आप शायद आप लोग नेचर को सिर्फ ऑब्जर्व करते होंगे तब आप इस बात को समझ सकते हैं, वरना नहीं। हम तो समंदर पे भी जाके चाय और बिस्किट खा के आ जाते हैं, हमें वहां भी यही चाहिए कि चलो कुछ खाने का साथ ले जाएं। हम पहाड़ों पे जाते हैं, आलू चने बना के ले जाते हैं, खा के आ जाएंगे। जिस कौम का हाल जो कि उनकी ख्वाहिश ही खाने की हो, आप बताइए वो कहाँ नेचर से देखेंगे, वो कैसे उन पत्तों को गिरता हुआ देखेंगे, उनको कैसे लगेगा कि ये दरख्त इतने पत्तों से महरूम रह के, इसके इतने बच्चे दुनिया से चले गए, ये फिर भी खड़ा हुआ है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ा। हमारा हाल है जरा गम आ जाए हम कहते हैं हम डिप्रेस हैं, किसी ने कहा फलां बहुत परेशान है अब उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ दी है, तो मैंने कहा ना पढ़े, अल्लाह का क्या जाएगा? फलां कहते हैं मुझे ऐसा क्यों बना दिया, वो कहता है मुझे अल्लाह को नहीं मानना तो ना मानो, तुम्हारा क्या जाता है? फलां कहते हैं मैं इतना खुश हूँ अब क्या खुशी में भी नमाजें पढ़ूं, बाद में पढ़ेंगे, जो जिसका दिल चाहे करे। लेकिन अल्लाह ने कायनात से ये बात हमें सिखा दी, क्या के लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को मान लिया उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने इसकी हुक्म बरदारी न की, अगर इनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी के लिए वैसा ही और हो तो सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है और जिनका ठिकाना जहन्नुम है जो बहुत बुरी जगह है। ये है आयत नंबर 18 और 18, पिछली आयतों का ही ततिम्मा है। इसका उन्वान लिखिए, यहाँ के पाने वाले वहाँ के महरूम। ये है वो बात जो पिछली आयतों में समझाई गई थी, यहाँ जो मर्जी पालो, कितना भी पालो, तुम दुनिया के सबसे फेमस शख्स बन जाओ, सबसे मालदार शख्स बन जाओ, तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत मिले, अगर तुमने रब की दावत को कबूल नहीं किया तो तुम वहां महरूम होगे। अबू लहब के पास क्या नहीं था, इतना हुसन था कि उसके चेहरे पे ऐसे लगता था जैसे शोले निकल रहे हैं, इसीलिए उसको अबू लहब कहते थे। उसका नाम ये नहीं था, अब्दे बुत नाम था उसका, बुत का बंदा, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर इतना खून मचलता रहता था कि उसको लोग कहते थे ये शोलों का बाप है। आज है उसका नाम, उसके अपने बच्चों ने मरते हुए उसको नहीं पकड़ा, ऐसी बुरी बीमारी से मरा था जो अछूत समझी जाती थी। कितने दिन इसकी लाश जो थी मक्का की गलियों में रुलती रही, आखिर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि कैसी औलाद है कि जिसने बाप को इस तरह रखा हुआ, दरख्तों से छड़ियां उतार के उन्होंने उसके साथ उसकी लाश को धकेल के घड़े में डाला था। बचेगा वही जो लोगों को नफा देगा और जो कबूल करेगा। ये दो किरदार है हम सबके सामने, दावत सामने है, कुछ कबूल करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जो आज कबूल नहीं करेंगे इसलिए से कि अभी हमारे पास वो मौका नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो मौका छिन जाए। कल क्यामत के दिन लोग अपनी सारी दौलत दे के अल्लाह को राजी करना चाहेंगे कि अल्लाह हमने सारी जिंदगी की जमा पूंजी ये जमा किए इसको ले ले, अल्लाह ताला कहेंगे ले लो, लेकिन एक दिन के अजाब से भी वो नहीं बचा सकेगी। आज इंसान की आंख का एक आंसू जो अपनी शर्मिंदगी और नदामत की वजह से बहाता है, उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों पे पानी फेर सकता है। कल क्यामत के दिन जहन में इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, अहादीस में आता है कि उनके चेहरे पे गड़े पड़ जाएंगे, नालियां पड़ जाएंगी, निशान पड़ जाएंगे, उनके आंसुओं से पानी के जौहर जमा हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह को जरा तरस नहीं आएगा। ये आज का वक्त है, ये मौका निकल गया तो फिर खैर नहीं, ये आखिरी चांस है, ये लास्ट चांस है। मैं कभी मौका मिले अखबार सामने आए या कोई मैगजीन, तो उसमें लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कहा था लास्ट चांस, ये आखिरी मौका आ रहा है, ये सेल निकल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सोचती हूँ इनको क्या पता, ये दुनिया भी एक लास्ट चांस है। आज का दिन लास्ट तक चला गया, कल जो आएगा वो कल का दिन होगा। अगर मैंने आज से फायदा नहीं उठाया तो ये आज मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। जो लोग आज इस दुनिया के फायदों के लिए आखरत को और हक को छोड़ देते हैं, कल उनको अपनी चीजें इतनी हकीर दिखेंगी कि उनको दिल चाहेगा कि ये सारी दुनिया और इसके बराबर एक और दुनिया मिल जाए और मैं अल्लाह को देके अजाब से बचने के लिए दे दूं तो वो तैयार है, लेकिन कबूल नहीं होगा। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे एक बच्चा है, खिलौनों में खेलता रहता है और सारा दिन वो खेलता है। आप अपने आप को सोचें, बच्चे को तो छोड़ें, फिर ही बात समझ आएगी। यानी आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए, जो लोग सारा दिन खेल तमाशों में रहते थे, ना पढ़े ना पढ़ाए ना कुछ, आज वो बिल्कुल जाहिल है, कुछ उनके पास नहीं, ना अच्छी जॉब मिलती है ना स्टेटस है। कभी किसी पुरानी क्लोजेट को खोल के उनकी माँ दिखाए कि ये थे तुम्हारे खिलौने, और वो सारे खिलौने जमा करे और जाके किसी कंपनी के पास चला जाए कि ये सारे खिलौने ले लो लेकिन मुझे यहाँ जॉब दे दो, कबूल करेगा? खुद अपने खिलौने ही को लेके खेलता रहे, बड़ा होके चलो तब भी खेलता, आज खेलो। आज आप में से कोई है जो अपने बचपन के खिलौनों से खेले? तो जिस तरह दुनिया में चंद साल की जिंदगी के बाद सारी चीजें खेल खिलौने बेकार लगने लगते हैं ना, इस तरह कयामत के दिन ये हमें अपनी डमीज लगेंगी, ये खिलौने लगेंगे। और इसका एक बेहतरीन नमूना हमें दुनिया में भी मिलता है, कब? जब हम जहाज पे बैठ के चढ़ रहे होते हैं ऊपर, जब जहाज लैंड करता है, आप नीचे देखा करें खिड़की से देख के, मेरा फेवरेट जॉब है कि नीचे देखती हूँ और मैं देखती हूँ अब इतना गया, वो बोल रहे होते हैं अब इतने हजार मीटर इतने पे, और मैं देखती हूँ वो जो भी गाड़ियां, हाओ गाड़ियां लग रही थी, वो अब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे डंकी कारें, फिर और ऊपर और ऊपर, और आखिर में नीचे वो ऐसे सड़कें धागे बने हुए दिखते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह, हम सिर्फ 10,000 फुट की बुलंदी पे आए, हमें ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौने लग रहे हैं, तू तो हमसे कितना ऊपर है। वाकई तूने सच कहा कि इस दुनिया की तेरी नजर में मिसाल एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। वाकई सच है, जितनी निगाह बुलंद होती है उतनी ये दुनिया की चीजें हाव भाव से खत्म कर देती है इंसान को। लेकिन ये बात उसको ही समझ आएगी जिसको आएगी।